राम श्रद्धेय स्वामी जी से राम सुखदास जी महाराज 17 मार्च 1991 प्रातः लगभग 8 बजे रामधाम सिंथल राम
बंधम परम ब्रह्मे प्रपन्न पारिजाताय तोषवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतगुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीविभूषितकरान्नवनीतराभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायरविन्दरेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमः श्रीं शरदमुदेव्यो नमो नमस्ते चौरासी लाख जीव जोड़ियों में मनुष्य शरीर दुर्लभ है। ऐसे मनुष्य शरीर में भी सत्संग का मौका मिलना दुर्लभ है। मनुष्य शरीर तो मिल गया है तो किस कारण से मिला इसका कारण भगवान जाने। एक भगवत कृपा भी कारण बताया है, एक सामान्य रीति से जैसे जन्म होता है वैसे बारी आने पर मनुष्य ही हो जाता है। परंतु भगवान की विशेष कृपा होने से सत्संग का मौका मिलता है। आज शंकराचार्य महाराज ने कहा है दुर्लभम त्रयमेव, तीन चीज दुर्लभ बताई है, मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम और महापुरुष संशय। सबसे पहले दुर्लभ मनुष्य शरीर है और मनुष्य शरीर मिलने पर ये मुमुक्षा मेरा कल्याण हो ऐसी इच्छा बहुत दुर्लभ है। और ऐसी इच्छा होने पर भी अच्छे संत महात्मा तत्व के जीवन में उत्कोषों का संग दुर्लभ है। तो मनुष्य शरीर दुर्लभ, मनुष्य शरीर में फिर अपनी कल्याण की इच्छा ये दुर्लभ है, और वो होने पर संतों का मिलना दुर्लभ है, महात्माओं का। तो अपने को मनुष्य शरीर तो मिला हुआ है, मुक्ति की इच्छा चाहिए जैसी वैसी तो भाई हम लोगों को नहीं दिखती है। परंतु आज के जमाने में सच्चा सुनने का विचार है, ये बात तो हमारे लिए है। अब बात नहीं कोई महापुरुष के मिलने की, तो वो करते रहे सत्संग तो कभी इनको अच्छे पुरुषों का संग भी मिल जाए। तो भगवत चर्चा करने का अपने को अवसर मिला है, ऐसे सत्संग का भी तीन चार भेद बताया है। सत्कर्म होता है, सत चर्चा होती है, सत्चिंतन होता है और सत्संग होता है। ये चार भेद हम कर सकते हैं। सत्कर्म शास्त्रों ने जैसे काम कहा आज्ञा दी है वैसे करना, और जो निषेध किया उसको न करना, ये दोनों भी सत्संग ही है, सत्कर्म ही है। निषिद्ध कर्मों का त्याग करना भी बहुत आवश्यक है और शास्त्र विहित कर्मों का करना भी आवश्यक है। तो ये सत्कर्म है दोनों ही, निषिद्ध कर्मों का त्याग करना भी वो भी एक कर्म है, सत्कर्म है, और शास्त्र विहित कर्मों का करना भी सत्कर्म है। इसके बाद सत्चर्चा होती है, जो भगवान की चर्चा है वो सत्चर्चा है, सत रसत दो चीज है, एक नाशवान है एक अविनाशी है। तो नाशवान की चर्चा है वो सत चर्चा नहीं है, वो असत चर्चा है। और अविनाशी परमात्मा तत्व की चर्चा है वो सत चर्चा है। आपस में चर्चा करना, बात करना, तो ये एक सत चर्चा है। एक है सत चिंतन, भगवान के नाम का जप करना, भगवान के स्वरूप का चिंतन करना, ये सत चिंतन है। इसके सिवाय शास्त्रों का, संतों की वाणी का जो चिंतन है, विचार है, वो भी सब चर्चा है। तात्विक बातों का विचार करना वो भी सब चर्चा है। निषिद्ध कर्मों के त्याग की बात कह दे वो भी सब चर्चा है। वेद कर्मों का कहना है जो करना है वो भी सब चर्चा है। ये सब चर्चा है। तो हम लोग सब चर्चा कर लिए या इकट्ठे हुए हैं। इसके बाद सत्संग है। वो सत्संग क्या है? सत्य तत्व के साथ में हमारा संग हो, मानो सत्य तत्व में निष्ठा हो, हमारी आसक्ति हो जाए, हमारी लालसा हो जाए, हमारे भीतर से वही बात हो को सत्य तत्व को प्राप्त करें, ऐसी इच्छा हो, वो है सत्संग। उसमें भी सत्संग बढ़िया वो है जो सत्य तत्व का अनुभव हो जाए, असत सब का त्याग हो जाए, असत का संग सर्वथा त्याग हो जाए और सत्य के साथ प्रेम उसका अनुभव हो जाए, ये है असली सत्संग। इससे पहले है वो सत्कर्म है, सत्चर्चा है, सत्चिंतन है, ये बात होती है। आखिरी तत्व का अनुभव हो जाए वो है सत्संग। सत्संग होने के बाद असत्संग फिर नहीं जाता, मन सत्संग हो जाता है, सत्संग में प्रेम हो जाता है, आकर्षण हो जाता है, तो वहां असत का संग नहीं रहता, सर्वथा असत का संग छूट जाता है। तो असत संग छूटना भी सत्संग है और सत्य में निष्ठा होना, स्थिति होना, वो भी सत्संग है। तो ऐसा सत्संग है वो बड़ा दुर्लभ है। वो एक बार हो जाए पर हो गया, सदा के लिए हो जाता है। एक बार भी उसमें सत्य में स्थिति हो गई फिर सदा के लिए वो स्थिति हो जाती, फिर इधर उधर नहीं होती। तो वो वास्तव में सत्संग है, उसके लिए ये साधन है, सत्कर्म है, सत्चिंतन, सत्चर्चा, ये सद्भाव, ये सब उसके लिए साधन रूप है। तो उस साधन रूप से सत्चर्चा हम लोग करते हैं आपस में। ऐसी सत्चर्चा हमें जब भगवान की चर्चा है, जैसे रामायण का पाठ है, तो ये बहुत उत्तम है। सत्चर्चा हम करते हैं, अच्छे पुरुष मिल करके बात करते हैं, अच्छे पुरुष मिल जाए उनसे बात सुनते हैं, वो बड़े ऊंचे दर्जे की बात है। तो रामायण के पाठ में दोनों बातें हैं, संतों की तो वाणी है। गोस्वामी जी महाराज बड़े सच्चे अच्छे संत हुए, वे संत भी मामूली नहीं हुए हैं, बहुत बड़े ऊंचे दर्जे के संत हुए। संतों की वाणी बड़ी ऊंचे दर्जे की है और ये दो चीज दो बताई, दो तुम तुम्हार सेवक, दो चीज क्या कहा है,
बड़े
उपकार है। ये तो रही तो जग जो उपकारी, तुम तुम्हार सेवक सुधारी। तो बिना कारण हित करने वाले भगवान है और भगवान के प्यारे भक्त है। दूसरों के कुछ न कुछ स्वार्थ रहता है, कथा करें, सत्संग करें, सत्चर्चा करें, सत्चिंतन करे, तो उसमें कुछ न कुछ स्वार्थ की भाव रहती है। स्वार्थ की भावना, वो भावना है स्वार्थ की, वो असत का संग है। तो असत के साथ होते हुए सत्संग होता है। और ये स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने ऊपर वो परमार्थ नाही, सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, परंतु हेतु रज जगत उपकारी, ये बिना हेतु जगत मात्र का उपकार करने वाले दो हैं, तुम तुम्हारे सेवक, एक आप है, आप आपके सेवक है। तो गोस्वामी जी महाराज भगवान के सेवक हैं, संत है, महात्मा है, तो उनकी तो है वाणी और चरित्र है भगवान का साक्षात। तो ये दो चीज मिल गई, संतों का संग हो गया और सच्चर्चा हो गई, तो ये दो चीज हुई। तो सच्चर्चा करते हैं तो वो भगवान की वाणी महाराज गोस्वामी जी महाराज की, तो ये दो तरह का सत्संग है अपने, बड़ा बढ़िया है। भगवान की चर्चा होती है, गोस्वामी जी महाराज की वाणी है, वाणी का बड़ा असर होता है। एक साधारण व्याख्यान सुनते हैं और एक हम तात्विक विवेचन अथवा भगवान के गुण यश चरित्र आदि का वर्णन सुनते हैं, तो ये सब सच्चर्चा है, पर भगवान के गुण चरित्र आदि सुनते हैं ये बहुत श्रेष्ठ है। और भगवान के स्वरूप का, भगवान के तत्व का गहरा विवेचन होता है, उससे सत्संग हो जाता है, परमात्मा के साथ प्रेम हो जाता है, आकर्षण हो जाता है, उसका बोध हो जाता है, वो सत्चिंतन फिर आप से आप होता है और सत्चर्चा भी होती है और सत्कर्म भी होने लगते हैं स्वाभाविक ही। जैसे जैसे सत्य के पास में हम पहुंचते हैं, ऐसे ऐसे असत्य का नाश होता है, असत्य का संबंध विच्छेद होता है, असत्य का संबंध हमारा बनाया हुआ है और सत्य का संबंध स्वतः है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज शुभ राशि। तो ईश्वर का अंश है, चेतन है, अविनाशी है, तो ये स्वतः परमात्मा का अंश है। कितना ही कुसंग हो जाए, असत्संग हो जाए, कुसंग हो जाए, बिल्कुल पतन हो जाए, तो भी ईश्वर का अंश वो रहता है। ये सत्यता नष्ट नहीं होती। सत्य का विनाश कैसे होगा, ना भाव विद्यते सत्य, सत्य का अभाव नहीं होता। तो परमात्मा का अंश रूप होने से स्वतः ये सत्य रूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी मान विनाश नहीं होता, तो सत है ये, और चेतन है, अमल शुद्ध है, और शुक राशि सुख का भंडार है। तो ये तो स्वयं रहता ही है, तो ये स्वयं रहता है, उसकी प्राप्ति करना है और असत का त्याग करना है। इसमें एक बात एक स्वतः है कि असत का त्याग स्वतः होता है, स्वाभाविक त्याग होता है, और सत्य की प्राप्ति स्वतः है, स्वाभाविक है, क्योंकि परमात्मा के अंश हम हैं, तो उस परमात्मा से हम दूर हो नहीं सकते, परमात्मा हमारे से दूर हो नहीं सकते, उसके साथ हम रहते हैं, और असत का संग हमारे रह नहीं सकता। शरीरों के साथ भूल मिल जाते हैं और शरीर को ही अपना स्वरूप मानने लग जाते हैं, यही मैं हूँ, ऐसा मानने पर भी असत के साथ में घुल मिल करके नहीं रह सकता, ये सतरूप से ही रहता है, अविनाश रूप से ही रहता है, पर असत के साथ घुल मिल जाता है। इसमें गलती क्या होती है कि अपने को असत रूप ही मुख्य मानने लगता है, सतरूप को तो बिल्कुल भूल जाता है, शरीर को ही मैं मानने लगता है, तो असत में अपनी निष्ठा हो जाती, स्थिति हो जाती है, तो हो नहीं जाती है, हम मान लेते हैं। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते, वो मान लेता मैं करता हूँ, भोगता हूँ, ऐसा हूँ, ये मान लेता है, उस मान्यता की दृढ़ता हो जाती है, तब शरीर की मुख्यता मानने लगता है, और शरीर की मुख्यता ध्यान हो जाती है ना, यही महान जड़ता है। तो शरीर में एक मान लेता है, इसका तादात्म्य हो जाता है, जैसे लोहा होता है उसको गर्म किया जाए तो वो रंग बदल जाता है, लाल सुर्ख हो जाता है और उसमें अग्नि आ जाती है। वो घास पर ना कोई घास जल जाएगा, कोई चीज होगी जलने वाली, सुमन होने पर वो जल जाएगी। तो लोहा और सोना अग्नि दोनों एक हो गए, तो एक हो जाए इसको तादात्म्य कहते हैं। इसका नाम तादात्म्य है, तस्य आत्मा तदात्मा तस्य भाव तादात्म्य, हम एक रूप हो जाते हैं। ऐसे हम लोग शरीरों के साथ एक रूप हो गए, एक रूप है नहीं। हाथ जल गया सा कवे से हाथ जल गया, चिमटे से हाथ जल गया, लोहे से हाथ जल गया। लोहे से जलता नहीं है, लोहे में आग है उससे जलता है। ऐसे करता है भोगता है, ये स्वयं करता है स्वयं भोगता है, परंतु शरीर को साथ ही मानता है, शरीर की ही मुख्य मानता है, शरीर की मुख्यता मानता है, मुख्य है स्वयं। इस वास्ते है ये जितने बताए कि सत्कर्म करो, तो सत्कर्म क्या है? असत से अलग होता है वही सत है, और सत के साथ एक होता है ये भी सत है। तो झूठ का बढ़ गई माने आदि का छोड़ देना भी सत्संग है, और सत्य पालन है, दया है, क्षमा है, उदारता है, संतोष है, त्याग है, वैराग्य है, ये भी सत्य सब जाने वाला दैवी संपत्ति है, ये है सत्संग। तो आज संपत्ति का त्याग करना और दैवी संपत्ति का उपार्जन करना, ये दोनों ही सत्संग है एक तरह से, पर असली सत्संग के हेतु है ये। इस वास्ते ये सत्कर्म होते हैं, क्रिया करने पड़ता नहीं करना, वो सत्क्रिया है। क्रिया सत नहीं होती, क्रिया का तो आदि और अंत होता है। तो फिर सत कैसे हुआ? कि सत की प्राप्ति व हेतु होने से ये भी सत्कर्म कहलाते हैं। सद्भाव है, साधु भाव है, सत के पांच अर्थ किए गीता में। सद्भाव है, साधु भाव है, सदित्य प्रयोजित प्रशस्त कर्म तथा सत्शब्द प्रयोजित यज्ञ तपस्दान स्थिति सदित कर्म से तदर्थ सदित्य विधीयते। सद्भाव मानो सत्ता नित्य रहने वाला चीज, हरदम रहे, कभी विकृत नहीं हो, कभी नाश नहीं होता, ऐसे सत्य रहने वाला उसको सत्य शब्द कहते हैं। ये तो सत्शब्द उसका नाम है, सद्भाव है। एक साधु भाव है, श्रेष्ठ भाव है, दया है, क्षमा है, उदारता है, संतोष है, त्याग है, वैराग्य है, श्रेष्ठ भाव, इसमें भी सत्शब्द का प्रयोग होता है। वो तो सद्भाव हुआ, ये है साधु भाव, श्रेष्ठ भाव, उत्तम भाव, देवी संपत्ति। ऐसे देवी संपत्ति भाव होता है, क्रिया होती है, तो भी सद्भाव से ना भी सत्ता है। वो सत्य तत्व होने से सत्ता है, ये भाव अच्छा होने से इसको जो भी सद्भाव, सद्भाव साधु भाव है, सद एतत प्रयोजते, सत इस तरह का प्रयोग होता है। भाव लगाते हैं तो सत्ता के वजह से भाव लगता है, और जो श्रेष्ठता है उसमें भी सद्भाव लगता है। तो सद्भाव साधु भाव है, सद एतत प्रयोजित इसका प्रयोग होता है, ये भी सत कहलाते हैं। और प्रशस्त कर्मणि जो प्रशंसनीय प्रशंसनीय कर्म होता है, यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि प्रशंसनीय श्रेष्ठ कर्म है, वो भी सत्य कहते हैं। उनमें भी सत्य वो होता है जो निष्काम से किए जाए, सकाम भाव से किए जाए, यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि, तो वो वास्तव में सत्य की प्राप्ति के कारण नहीं होते। कर्म कर्म सत्य होते हैं, परंतु फल नाशवान होता है, अविनाशी नहीं होता। और निष्काम भाव हो जाए तो असत का त्याग करने से निष्काम होता है, कामना ना रहे, काम ऐसा क्रोध है, रजोगुण शुद्ध में ये रजोगुण से उत्पन्न होने वाला है, क्रोध है, लोभ है, मोह है आदि प्रतियां पैदा होती है असत के संग से, तो वो कामना रहने से वो नाशवान हो जाता है। यज्ञ किया, दान किया, उसका फल स्वर्ग मिल गया, आगे अच्छे कुल में जन्म हो गया, वहां धन संपत्ति आदि मिल गया, तो भी नाशवान ही है। उत्तम कुल में जन्म है, वो भी सही तो नष्ट होने वाला ही है, उत्पन्न और नष्ट होने वाला साथ है, तो असत का संग रहता है। तो प्रशंसनीय कर्म कौन से हैं? जो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार है उनको भी सत कहते हैं। एक ही विश्वास स्वर्ग से प्रार्थियन थे, तो ये सत्कर्म है। इसने नीचे साधारण शास्त्र की आज्ञा के अनुसार विवाहादि कर्म भी सत्कर्म हो जाते हैं। अगर हम ठीक तरह से शास्त्र की आज्ञा से सकाम भाव कर्म सकाम भाव से वो भी सत्कर्म हो जाते हैं। शास्त्र की आज्ञा होने से विहित कर्म होने से निषिद्ध न होने से ये भी श्रेष्ठ हो जाता है, परंतु ये भी सत्य कहलाता है। तो प्रशस्ति कर्म सत्ता पास युज्यते, ये सत्संग का प्रयोग हो जाता है और सत्य का संग हो जाता है उच्चारण करने में, कोई सत्कर्म है। यज्ञ तप से दान जैसे स्थिति, यज्ञ में तप में दान में जो निष्ठा होती है, किसी की निष्ठा होती है जैसे कर्ण आदि की दान में निष्ठा थी, भगवान ने प्रशंसा करी है। जब कर्ण मारा गया है, अर्जुन ने मार दिया, तो भगवान ने कहा भाई आज एक दानी हमारे संसार से उठ गया, प्रशंसा करी। तो अर्जुन के मन में एक महाराज और भी तो बहुत से राजा महाराजा है, धनी है, वे भी तो दान करते ही है। तो कर्ण बड़ा दानी था, बहुत बड़ा दानी। फिर उसी परीक्षा की बात भी आती है किसी किसी जगह, तो परीक्षा करी एक ब्राह्मण, उसके पिता शांत हो गए। पिता शांत होने पे वो बड़ा भाव था और पिता भी बड़े वेद पाठी अच्छे श्रेष्ठ थे, तो उसके मन में आया मेरे पिता की दाह क्रिया की जाए तो चंदन में की जाए। और वर्षा ऐसी जोर से हुई कई दिन तक जो सूखी लकड़ी भी नहीं मिलती, अब चंदन इतना कहां से मिले, तो सब जगह बोले मिला नहीं। युधिष्ठिर महाराज आदि के पास में गया कि भाई सूखी लकड़ी थी कहां से लाए, है नहीं, चंदन इतना कहां से लाए, दाह क्रिया हो जाए, लकड़ी मिलती नहीं। तो सब जगह ढूंढा नहीं मिला, फिर कर्ण के पास गया। कर्ण के पास महाराज दाह में दाह करनी है हमारे पिताजी की, वो दाह क्रिया करनी चंदन में, यहाँ चंदन बहुत है हमारे, तो महिला में जो चंदन लगा हुआ था सब जगह वो तुरा दे, सब तुरा के ले जाओ, ले जाओ दाह क्रिया में। ऐसी बात हुई ब्राह्मण की दाह क्रिया करनी है, सब चंदन ही बड़ा कारीगरी का बढ़िया काम राजा होता था, वो सब दे दिया। तो इस तरह से उसकी परीक्षा हुई, तो वो दानी था बहुत बड़ा, इससे भी बढ़कर के दानी था वो, कि जिस समय भगवान सूर्य की उपासना करता तो भगवान सूर्य भगवान को अपना इष्ट मानता था तो सूर्य का खास पुत्र वो, परंतु सूर्य का इष्ट मानता था। फिर उसको मालूम हुआ कि मेरे पिता सूर्य भगवान है, मैं सूर्य का पुत्र हूँ, ये ज्ञान पीछे हुआ, पहले सूर्य का इष्ट मानता था। तो सूर्य के भगवान की, सूर्य भगवान की जिस समय पूजन करता उस समय कोई भी आकर चीज मांगता उसको वो दे देता। तो कर्ण जन्मा है ना, इसका नाम था वसुसेन, वसुसेन नाम था इसका। क्या हुआ कि इसके साथ में एक तो कवच था, ये चमड़ी है ना हमारी, ऐसी चमड़ी जो दी से कोई शस्त्र काट नहीं सके इसको, ऐसा कवच था चमड़े के साथ ही हुआ पता ही नहीं लगता, मनुष्य सही को कोई काट नहीं सकता, ऐसा चमड़ा था, वो जन्मजात था, वो तो कवच था। वो एक था कुंडल, दोनों कानों में पहने के कुंडल थे, उन कुंडलों की आभा पड़ती वहां तो कोई शत्रु है तो उस पर विजय नहीं कर सकता, कर्ण की विजय होती थी। ऐसे कुंडल से पहने हुए तो अब इंद्र की है, कैसे मरे, इंद्र के पुत्र थे अर्जुन, तो अर्जुन के मन में आया भाई अब कैसे मरेगा ये, तो फिर भगवान की कृपा थी ना, तो वो क्या करे कि जिस समय में कोई यार मांगे चीज है तो नरता नहीं दे देता। तो कर्ण को सपना आया महाभारत में कथा आती, स्वप्न आया कल कोई मांगे तो कवच और कुंडल नहीं देना है, स्वप्न में भगवान सूर्य ने चेता दिया। वो कहते हैं ये मेरे से होगा नहीं, निश्चित नहीं होगा। फिर वो इंद्र ब्राह्मण बन करके आया, क्या चाहते हो आपका? कवच और कुंडल चाहता हूँ। सुरा लेकर के ऐसे चीर करके चमड़ी उतार दी, सब चमड़ी उतार, शरीर मात्र चमड़ी उतार देना कोई मामूली बात नहीं है, थोड़ा सा कांटा लगे तो बुरा लगता है, चमड़ी उतार देना है, कोई कपड़ा थोड़ा ही है तो पैदा वो उतार दे, मांस निकल गया है वह शरीर में, परंतु लोग जल रहा है सब कुछ है, उतार कर दे दिया। सूर्य भगवान की चेता ने पर भी और कुंडल दे दिए, तो ऐसा विलक्षण दानी था। इस बात से भगवान ने कहा भी आज इस भूमंडल से दानी चलाएगा, पर दान वीर, दान वीर सा ये दान देने वाला चला गया। तो भारत सार में कथा आती है, उसमें आती है कि भगवान ने कहा तो अर्जुन ने कहा महाराज ऐसा क्या दानी था कि दानी था वो, तो अभी तक तो प्राण निकले नहीं थे, पड़ा हुआ था, शस्त्र से छोड़ गए सब, ऐसे प्राण रहते समय उस समय में भगवान कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण बन करके पहुंचे और कहा कि हमारे धन की जरूरत है, तो वो क्या हुए मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो पड़ा हूँ, श्वास आ रहे अंतिम श्वास आ रहे, तो क्या दू कैसे करूं। तब उसने कहा कि देखो आप अगर लेना चाहो तो मेरे दांतों में हीर करी हीर है, हीरा है, वो आप ले जाओ, ये ब्राह्मण का काम तो उससे भी हो जाएगा, ये आप ले जाओ। करे भी हम कैसे ले जाओ, तो क्या करूं क्या करते, हमको भी दांत तोड़ कर ले जाओ, ब्राह्मण है। तो उसने फिर कसर करके धनुष को उठाया, धनुष की लड़े नौ को तीर से उस नाव को काट दिया और दे दिया।
तो भगवान की आगे कितना विलक्षण था,
कोई ना देकर नहीं जा सकता, कोई आवे कोई करने के पास जाता नहीं है, तो भगवान प्रकट हो गए। बोल क्या चाहता, तो महाराज मैं आपसे क्या चाहता हूँ, मैं सही चाहता हूँ कि मेरी दाह क्रिया हो तो अदग्ध भूमि में हो, जहाँ भूमि दाह न हो ऐसे अदग्ध शुद्ध भूमि में मेरी दाह क्रिया हो। और बोले दार किया पीछे पहले पहले बोल कौन क्या चाहता है, तो कहा कि अन्नदानम दुर्भिक्षे अन्नदानम दातृत्व और सुभुक्षे हेम दातृत्व दे ही में बद सुख, आप मुझे अब तीन दान माना, मैं दान करूं कि जो दुर्भिक्ष पड़े तो अन्नदान खुला करूं और सुभिक्ष और सब संपन्न हो तो हेम दान करूं, आतुर भय हो तो अभय दान करूं, ये दान उभय दान को ये वरदान दे दिए। फिर क्या जाता है अलग भूमि में मेरी दाह क्रिया हो, तो ये भगवान का ठीक है। तो मेरे कभी यहाँ अत भीष्म शतम दग्धम द्रोणानां च शतत्रयम् दुर्योधन सहस्रं च कर्ण संख्या नवेद्यते, इतने यहाँ पर भरे हुए ये जमी है, तो अधिक नहीं है, तो जमीन अधिक से नहीं मिली, मुर्दे जलते ही सबसे चर्चा है जुगा जुगा अंतर में। तो फिर भगवान ने बाया हाथ में उसको जलाया, दाया हाथ मेरा जला हुआ है, मैंने बावन बन करके और बलिराज से दान लिया पृथ्वी का, तो दान ले तो दो प्रतिग्रह हाथ जल जाते हैं, हाथ वो शुद्ध नहीं रहते, तो भाई ये हाथ जला हुआ है, मैंने दान लिया है और ये हाथ जला हुआ नहीं है। तो उसमें फिर अपने हाथ में लोग कहते हैं हर बजरी हर दासी हरि का नाम पांडु पांडु पांच सौ उधारी करदागी करण, करदागी करण कर्ण में कर्ण को हाथ से चाहे भगवान,
कैसा कर्म, इस बात को करना मत, दान मारा जो भगवान का भाई दान ही उठ गया, पृथ्वी मंडल से दान ही उठ गया, तो बहुत विलक्षण दान ऐसा कर्म। तो किस बात चली थी, यज्ञ तपस्या दाने तो दान की निष्ठा है, दान देने की निष्ठा है, स्थिति है कि हमने दान देना है तो दान में ना नहीं कहता। कर्णस्तम शिविर मानसम जीव जीवू तो बढ़ाना ददो दधी थी रस्थी ने नास्ते देयम महात्मा नाम, श्रेष्ठ पुरुषों के लिए अधे वस्तु नहीं है कि भाई हम नहीं दे सकते। तो कर्ण स्पन कर्ण ने त्वचा उतार कर दे दी, या यूं कहने में तो सीधी सी बात बोले, थोड़ी सी चमड़ी उधरे तो पता लगे कितना जोर आता है, चमड़ी की दूर हो जाए कोई कारण से चमड़ी दूर हो जाए तो कितना दर्द होता है, वो सब की सब काट करके दे देना। ऐसे शिवी के पास आए हैं इंद्र और अग्निदेव उसकी परीक्षा लेने के लिए, तो कबूतर और बाज बढ़ करके आए, कबूतर तक आए पीछे बाज, वो कबूतर आकर के शिवी के गोद में गिर गया, बाज ने कहा कि मेरा भक्षण हो मेरे को, शिवी ने कहा कि मैं नहीं दे सकता, ये राजपूतों की पहले से रीत आई है बना और अभी तक भी थी, अब भी होगा, शरण आ जा फिर वो नहीं। एक बात सुनी है, जोधपुर का कोई ऐसा अपराधी था, वो भयभीत होकर के बीकानेर दरबार के पास आ गया कि मैं ऐसे हूँ दोषी हूँ, तो मेरे घर जाओ अभयदान शरण आई साधार, इनका शुभराज होता है राजपूतों से नमस्कार करना, शरण आई साधार शरण आ जा उसकी रक्षा करना। उदाहरण गया, एक सूरी गई, सूरी के जो मेरे बच्चे साथ में थे वो चली गई, तो वह सूर की शिकार नहीं करते, सूर को बांटते नहीं सदा के लिए, कि बच्चों को लेकर शरण आ गई। ऐसे राजपूतों में शक्ति विशेष ताकत थी, तो शरण ही साधारण शरण आ जाए उसकी रक्षा करना। जोधपुर दरबार में मंगा कर लाओ, वहां से ले आओ, तो वहां कर भूगेंद्र दरबार से मांगा तो कहा अंदाता आप बड़े हो, हम तो छोटे हैं आपसे, तो बात यह है कि हमारे पेट में है वो, आप चीर कर दिखा दो, जीते जीते नहीं। ऐसे शक्ति होना तो वे भी दानी हुए, जाते जाते दानी है, दान यज्ञ तप इनमें होती है, ऐसे तपोनिष्ठ हुए कहीं, तो कर्मस्तम शिविर मानसम और जीव जीवू तो बहाना जीव का महत्वा नहीं हुआ है, उसने अपना जीव दे दिया, वो कथा मेरी पूरी याद नहीं है उसी, परंतु उसने अपना प्राण दे दिया, ददो दधी सी रस्थी ने और दधी सी ऋषि ने अपनी हड्डियां दे दी। दधी सी ऋषि तप करते थे, बड़े तपस्वी थे, बड़े तपस्वी, तो एक बार देवताओं के असुरों के आपस में युद्ध हुआ, उस युद्ध में देवता हार गए, तो देवता हार गए तो भाग गए वहां से, परंतु मेरे अस्त्र शस्त्र छीन लेंगे फिर हमारी विजय भी नहीं होगी, तो दधी सी ऋषि के यहाँ पर गए वो और जागा महाराज हमारे अस्त्र शस्त्र है जिसने आप रख लो, जो कभी हमारी विजय होगी तो हम इनसे अपना काम लेंगे। तो दधी सी ऋषि ने भी स्वीकार कर लिए, दधी सी ऋषि की स्त्री गई थी झरने पर जल लाने के लिए, वो पीछे आई तब तो कहा क्या बात है, बात ऐसी है कि अभी देवता आए उन्होंने असुर शस्त्र लिखे तो धर दिए, तो अब बोली कि महाराज किसी की जरूरत नहीं रखना चाहिए, जरूरत में बड़ा खतरा है, रक्षा करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, तो मैंने तो रख लिया और मैंने कह दिया, तो महाराज फिर सच्चा किया आपने कह दिया तो आप क्यों मर दी, तो रातों जगते थे दधी सी, कहीं अस्त्र चुरा गए तो बड़ी मुश्किल हो जाती, कई वर्षों बाद फिर क्या किया वो मंत्र जप करके मंत्रों का जल मंत्रित कर मंत्रों का जल सब छिड़ करके धो करके दधी सी पी गए, अब अस्त्र को निस्तब्ध हो गए। तो वे दर्जी जी तप कर रहे थे, बड़ी विलक्षण स्थिति थी उनकी, ब्रह्म ज्ञानी थे, तत्वों के जीवन मुक्त महापुरुष थे। तो इंद्र आया तो इंद्र ने देखा कि हमारे पास इतना राज्य त्रिलोकी का राज्य है, परंतु मेरे मन में इतनी प्रसन्नता नहीं है। एक दधी सी ऋषि जंगल में बैठे तप करते हैं, प्रसन्नता है। तो कहा कि महाराज, आप जिस विद्या को जानते हैं वो विद्या मेरे को भी दे दीजिए, कुछ आपके पास उन्हें, फिर आप प्रसन्न हरदम विचित्र प्रसन्न रहते हो, असर पड़ता है। वो विद्या मिल जाए तो इंद्र को कह दिया कि तुम पात्र नहीं हो, उस विद्या के लेने लायक नहीं हो, तुम क्या हो गए, कभी कोई शादी थोड़ी सी, तुम इंद्रासन पर सुख भोगते हो, बड़े बड़े गद्दा पर लेटते हो, तो वो सुख और गदा रात में लेटता है उसे सुख में कोई फर्क नहीं है, उस सुख लेने वाला तो विद्या में अधिकारी नहीं। ऐसे दो चार बातें सुना थी तो इंद्र को क्रोध आ गया, त्रिलोकाधिपति मैं हूँ, मैं पास नहीं तो और पास कौन मिलेगा। तो कहो देखो, आज से याद रखो, अगर ब्रह्म विद्या किसी को दी तो मैं तो सिर काट दूंगा, मैं मेरे कोई नट गया, आप नहीं देते हो और को दी तो सिर काट लूंगा आपका। दर्जी का ठीक, कोई बात नहीं। फिर आए थे अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार ने पहले आकर कह दिया कि महाराज हम ज्ञान चाहते हैं, कि तुम जाओ ब्रह्मचर्य का पालन करो। तो ऐसा है, तीन बार आए हूँ, 33 वर्ष करके 99 वर्ष हो गए। फिर आए हो तो फिर आए दिन बीच में इंद्र आ गया, उसने कहा ब्रह्म विद्या दो तो मैं काट लूंगा। तो आए कि महाराज ब्रह्म विद्या हमारे को, कि तुम पात्र तो हो गए परंतु मैं पूरा दे नहीं सकूंगा, और वो सिर काट देगा तो पूरा बोल ही नहीं सकूंगा, तो तुम दूसरा किसी को गुरु बढ़ा लो और उसने ले लो, अच्छा रहेगा, मरने की कोई डर की बात भय नहीं है, परंतु तुम्हारा काम हो नहीं सके, पूरा दे नहीं सकूंगा मैं। तो क्योंकि महाराज आपकी आज्ञा हो जाए तो हम देवताओं के वैद्य है, अगर हुकुम हो तो हम एक काम करें, उपाय हम जानते हैं कर रहे, क्या कि आपका सिर हम काट रहे, सिर काट कर रख दे, इंद्र सिर काट कर कहीं फेंक देगा, मिले नहीं तो हम क्या करें, वो हम रख लेते हैं और उधर सिर लगा देते हैं, वो काटेगा तो हम पैसे जमा देंगे, ठीक, हम तो आपको आपसे ही विद्या देंगे। गुरु बार बार नहीं बनाया जाता, हरे को नहीं बनाया जाता, और जगह हमारी श्रद्धा बैठती नहीं, गुरु है तो अच्छा कर लू, सिर काट दिया, एक घोड़े का सिर लगा दिया ऊपर, अब उससे वो पशु काम करने के लिए डॉक्टर होते ना, काट कर ठीक कर दे, देवताओं के वैद्य ठहरे, उसे देने लगे तो इंद्र, इंद्र ने सिर काट दिया, वो कहीं फेंक दिया, तो फिर पीसा वो सिर था लगा दिया महाराज, उसने वन दे दी। तो अब वे दली थी ऋषि, इंद्र आकर मांगता है वृत्रासुर के बंद के समय कि अस्थि मिले कभी, उसका वज्र बने, वो दधी से ऋषि की हड्डियां हो, तो दधी से ऋषि के हड्डियों में ताकत है, क्योंकि सब देवताओं के अस्त्र पी गए, वो सब हड्डियों में है मौजूद, तो हड्डियों में जिन ताकत है विलक्षण, वो दे तो इंद्र का उसकी विजय हो जाए, वृत्रासुर मर जाए। तो इंद्र ने जाकर मांगा के महाराज हड्डियां कहां ले जाओ, हम प्राण छोड़ देते हैं और ले जाओ, तो हड्डियां देने वाले प्राण छोड़ते, जल्दी करो, मेरी स्त्री कही है जल लाने के लिए, वो आ जाएगी तो मेरे काम नहीं होगा, जल्दी करो। तो प्राण छोड़ दिए, तो फिर अभी ब्राह्मण के शरीर को चीरे को एक ब्रह्म हत्या लगी, जिसमें तो हमारी ये आफत हो रही है, ब्राह्मण का शरीर चीरे को, तब गऊओं की याद की तो कम धेनु आई, वो आ करके उसको साठ सब साफ कर दिए, पीछे आई वो, तो उसमें क्या हुआ कि मांस तो साठ दिया और वो हड्डियां ले गई विश्वकर्मा, उससे वो आज गौ धनुष वज्र वज्र वो भगवान शंकर का चाप और ये पिनाक बना, पिछाड़ी वाले से वज्र बना, पासड़िया से वो धनुष बने, ऐसे बनाया। अब वो जब पानी लेकर पीछे आई यहाँ पर, तो हमारा शरीर तो चाट गए और हड्डियां ले गए देवता। अब पीछे कुछ नहीं बचा, उसे कैसे मारे गए? तो मैं तो सती होंगी, हम तो होंगे किस पर? तो रूमे थोड़े से किसी केस रूमे थोड़े थे, वो थी गर्भवती, उसके बालक था पेट में। तो भाई मर जाएगी तो महाराज का वंश नहीं रहेगा। तो उसने अपने को सीर करके उससे बालक निकाला। बालक निकाल करके पिपल बहुत से लगे हुए थे, उस पिपल की टहनी उसके मुख में दे दी और क्या, देखो बेटा तुम भी हमारे ही पुत्र हो, मैंने ही तुम्हारे को लगाया है, ये छोटा भाई है तुम्हारा, अब इसकी पालन करना। तो पिपल की देखी तारे वो हो गई सती। तब उसने कहा हमारे पिपला हुआ जैसी, पिपला था पिपला जैसी हुई, पिपल खाया हो पिपल से हुए पिपल। उसको पता लगा कि देवता हमने ऐसे किया कि हमारे पिताजी को मार दिया उसने, गाय ने चार दिया, तो गऊओं को साफ दे दिया, गऊ का गोमूत्र गोबर भी शुद्ध होगा, अपना मुंह अशुद्ध होगा, जिसको मुंह छू ले वो अपवित्र हो जाएगी चीज। चाट दिया मेरे पिताजी के मांस को, तो वो साफ दिया और क्या वरदान दिया भी, शुद्ध रहेगी गाय चार रहेगी और कुछ दिया है, इसको साफ वरदान दिए। और फिर वो भी सत्य, वो तो सती हुईगी, पिपला ऋषि नहीं है। फिर कहा कि इंद्र है, इसने किया सब काम, तो उसने यज्ञ किया है, यज्ञ किया उसमें आहुति दी, उस आहुति में इंद्र का भी स्वाह कर दिया, इंद्र को प्रसन्न कर दूंगा। तो महाराज ने जगह मंत्र चले, इंद्र का आसन हड्डी को बह आया, वहां से चला तो आहुति हो जाएगी अभी। तो ऋषि ने इंतजार किया, तुम यज्ञ बंद करो, इंद्र त्रिलोकी का नाथ है उसका नाश मत करो। सबने कहा तो छोड़ दिया, इंद्र बस गया, नहीं तो इंद्र का विश्वास कर देते हो। पिपला ऋषि बड़े प्रभावशाली ऋषि हुए, तो दधी से रस थी नहीं, दधीचि ने हड्डियां दे दी किसको? बिना कारण दधीचि ने कुछ अपराध नहीं किया, ब्रह्मचर्य होकर तुम्हारे सिर काट दूंगा, वो इंद्र मानता है हड्डी, तो हड्डी तो मस आएगा फिर बाकी चीज थोड़ी है, ले लो प्राण छोड़ दिया। तो दधी से रस्ते नहीं, नाश्ते दे महात्मा महापुरुषों के लिए कोई अधेय वस्तु नहीं होती, सब जो दी था सब दे देते थे। ऐसे ऐसे धार्मिक विलक्षण विलक्षण हमारे इस देश में हुए। कर्णस्पम शिविर मान सब जीव जीवो तो वाहन दधो दधी से रस्थी ने नाश्ते दे महात्मा। इसी बात है, तो ये दान है, यज्ञ तप और दान, ऐसे यज्ञ निष्ठा वाले हुए, दान निष्ठा वाले हुए और तप निष्ठा वाले भी हुए, बड़े 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 तपस्वी हुए हैं। महाभारत में कथा आती है, एक ब्राह्मण अपने तप करता था और गायत्री का जप करता था, तो बहुत बूढ़ा हो गया, तब तक ही उसमें तप में लगा ही रहा। वो उसके पास ब्रह्मा जी का आए थे कोई, फिर मृत्यु आई कि आपके समय समाप्त है मृत्यु, किसी मैं मृत्यु अभी जाऊंगा नहीं, मेरा और तप करना है, अभी गायत्री का जप करना है, तप करना है। तो फिर भी कैसे जाऊं, तुम्हारी उम्र सत्तर समाप्त हो गई है। तो उसने फिर किससे किया है भाई, क्या किया था जी, याद है? फिर उसने उम्र ली, हाँ वो दे दी। तो वो एक ब्राह्मण इंद्र ने आकर के मांगा उसे कुछ, तो मांगा तो वो बोले कि तू मेरे से मेरे को क्या देगा, तेरे से ये सब मेरे से ले ले, तू ले ले, मांग ले मेरे से कि मैं दूंगा, तू क्या देगा मेरे को। तो उसने फिर क्या मांगा है भाई, मृत्यु हो नहीं हो जाए उसे मांगा है, हाँ उसने मांगा कि आपने इतने तपस्या करी, तपस्या करी जितने जो जप किया आप, वो सब मेरे को दे दो, आपने जो तपस्या करी सब क्या गाय से सब कर से वो मेरे को दे दो। तो कहते शिवा शंकर बढ़ दिया दे दिया। मृत्यु ने कहा महाराज अब तो आप पधारो, अब तो आपने कोई दे दिया दे दिया, इसका विचार हिसाब करो। जो तपस्या का इतना फल है तो तपस्या दान देने का फल है कि नहीं? तो महाराज इसको बहुत बड़ा भाई दान है, एक गुणा दान और सहस्त्र गुणा पुण्य। तो तपस्या दे दी सभी, तो अब हम तपस्या करेंगे भजन करेंगे और अभी नहीं मरेंगे। तो बड़ी बड़ी दानी हुई महाराज विलक्षण विलक्षण दान। तो तपोनिष्ठ थे, उनकी क्या के बस गायत्री का जप करना तप करना ये करना है अपना, चाहे सो हो जाए। तो इनमें जो स्थिति होती है के लिए निष्ठा होती है वो भी सत कहलाती है। इसके सिवाय फिर चौथ पांचवी बात बताई, कर्म चाहिए तदर्थी हम भगवान के लिए किया जाए को कर्म वो भी सब सत है। अब उसमें यद करो सी यद अस्ना सी यद जुहो सी तदा सी यद तपस्या पांच क्रिया हो तत्पुरुषो मदर परम। जो करते हो चलते हो फिरते हो उठते हो चला तो एक एक कदम भगवान के अर्पण किया, ये भगवान के लिए भगवान के लिए भगवान के लिए अक्षर धन किया है। खाना पीना यद अस्ना सी जो खाता है पीता है सोता है शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करते वो भी भगवान के अर्पण भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। भगवान प्रसन्न हो इसके लिए करते, जैसे बच्चा भोजन कर रहे तो माँ राजी हो जाती है, आज तो सुर जीम लियो जी सुर हो क्यों जी सुर हो जाए माँ राजी हो जाए, ऐसे भगवान राजी हो जाते हैं भोजन करने भगवान अर्पण करने से। हम भी ईश्वर रोग होता प्राणी ना होगी हम आस्था। तो ऐसे भगवान भजन करे भगवान के अर्पण करे ब्रास ब्रास वो भी बड़ा भारी यज्ञ हो जाता है। और कर्म भगवान के लिए करो जो यज्ञान तप ये शास्त्री कर्म ये दो शारीरिक कर्म और व्यवहार का कर्म सही निर्वाह के लिए और व्यवहार में की जाए कर्म ये सब भगवान के अर्पण कर दो। वो सब का सब कर्म सही वो तदर्थी हम भगवान के लिए कर दिया जाए वो सब का सब सत हो जाए, सत्कर्म हो गया। क्योंकि उसका संबंध का सब भगवान के साथ संबंध हुआ सत हो गया, असत इसका नाश नहीं हो रहा। इस वास्ते कहा नेहा भी कर्म न सोचती पत्ते वायु ने विद्यती शुभ कर्म का निष्काम भाव से कर्म किया जाए इसका उपक्रम का विनाश नहीं है। नेहा भी कर्म न सोचती इसको उल्टा फल नहीं हो गया। और स्वल्प मत्ते से धर्म से इसका थोड़ा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा करे ऐसा हो जाएगा। इनका विस्तृत साधक संजीवनी है अभी विशेषा मिलने के बाद उसमें दिया विस्तार स्वस्थ किया। तो ये सब तदर्थी सत हो जाते सात पांच अर्थ बताए सद्भावे साधु भावे च और प्रशस्ते कर्मणि और यज्ञ तप सिद्धांत स्थिति और कर्म से ही तदर्थी हो ये सत है। तो ये सब सत कर्म हो जाते हैं पर सत का संग असली वो है जो सत्य में स्थिति हो जाए सत्य का अनुभव हो जाए असली सत्संग वो है। ऐसा सत्संग बहुत दुर्लभ है बहुत कम मिलता है इसकी जिज्ञासु भी कम है इसके जानने वाले ढूंढने वाले भी कम है और ऐसा दान दे ऐसा भी कौन हो सकता है। हमारा अपने तो इससे ही काम निकालते हैं सच सच करने से चलाते हैं काम उठे वो एक मारवाड़ी में कहा है ली पीटे ये तो ली पीटे गोली मानो सर्प को मारना था सर्प की ली मारने सर्प गया ना वो लिए लकीर पड़ गई ना वहाँ ये तो नहीं पीता है कोई मैंने कोट है यहाँ पर नहीं पीता हूँ सत्संग हमारे में सत्संग करा भगवान है तो नहीं पीता तो इस है तो वही बात उसी की है उसी के लिए कम है। ऐसे सत्संग अभी हो रहे तो बात ये कह रहा था कि गोस्वामी महाराज की वाणी वो वाणी एक विचित्र है। गोस्वामी महाराज की वाणी है बहुत विचित्र है रामायण। मैं तो कहीं जाता हूँ गाड़ी में बैठा हूँ कोई सुनाने वाला होता है तो सुनो भाई रामायण सुनो हमारे रामायण सुनो रामायण सुनता हूँ ये पद सुनाते तो पद सुनता हूँ रामायण का भगवान राम जी का कृष्ण भगवान का पद है मेरी लीला है वो सुनाओ तो वो सत्संग होता है। गोस्वामी जी वाणी में विलक्षण शक्ति है एक विलक्षण ताकत है उनमें विचित्रता है और बहुत अलौकिकता है, तो वो वाणी होगी और राम जी का जश होगा। दो बात हो, दोनों आ गई। हेत रहित जग जुगो उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक, तो चले तो राम जी का वाणी हुई सेवक की गोस्वामी बना दी। इस वास्ते वाणी विशिष्ट है। मैंने देखा है, नमूना आपको बताऊं। राजे श्याम रामायण चली तो छोटी अवस्था और पता नहीं, मेरे को तो पता है खूब ऐसी चली, घर घर में जगह जगह राधे श्याम रामायण हो रही है। हर समय मिले भी थे वहां मुजफ्फर नगर में, मुजफ्फरपुर है वो, तो वो भी कह रहे थे तुम ऐसी बाणी बना। मैंने कोई बातें सुने तो कहते आपने तो रण में शरण कहा, रण में शरण वो कवि है ना, कवि से अच्छे रण में शरण ही बताए भगवान शरणागत। तो ऐसे थे वो, बहुत रुपये लाख करोड़ रुपए कमाए, जगह जगह रामायण आज पता ही नहीं उसका। ब्रह्मांड का भजन माला इतने चले महाराज घर घर में ऐसी, आज नहीं थी कोई से बोले गई। ऐसी ऐसी बाणिया हुई, बहुत लोगों ने आकर्षण हुआ। पर गोस्वामी जी महाराज बाणी संबंध 1631 करो पसरा कथा हरिपद्धर शीसा नवमी भोमवार मधुमाशा अवधपुरी यथर्थ प्रकाशा। तो संबंध 1631 है, 1631, 1731, 1831, 1931 ये हो गया हमारा 2031। ये बात उसे ऊपर चल रही है अभी। अभी रामायण की चर्चा अगर आप लोग करें मस्त हो जाते हैं। मैंने देखा बूढ़े बूढ़े सज्जन बूढ़ी माताएं वे सुन समझते नहीं, रामायण की चौपाई आती नहीं, पढ़े लिखे है नहीं और क्या बोल रहे हैं ऐसा पता नहीं, परंतु महाराज बैठे सुनते हैं खूब। सत्संग में लोग नींद लेने लग जाए उठ जाए, पर रामायण की धुन चलती है तो लोग यूं शब्द हो जाते एकदम सुनने में, क्या एक धुनी में लक्षणता होती है। कल कहते हैं देखा मैं लाख सवा लाख आदमी इकट्ठे हो जाए और रामायण की चर्चा में रामायण पाठ हो रहा है, अर्थ भी नहीं, रामायण अर्थ भी नहीं सुनते, कोरा पाठ करते हैं। वो पाठ होने वाला है आज सुने उस रामायण का, रोशनवाणी इनका प्रभाव बढ़ते ही चला जा रहा है। कितने वर्ष हो गए समझ 1631 सही बात है, तब से शुरू हुई थी 1718-1920 400 वर्ष हो गए तो ही बना रही, वो ही चमक रही है। इतना असर होता है, ध्वनि का असर होता है, चौपाइयों का असर होता है। कोई भी रामायण की चौपाई बोल दे चुप हो जाए, जैसे स्मृतियों का कोई दे दे श्रुति जैसे कोई कह दे तो भैया बोलने की जगह नहीं रही। ऐसे हमारी बात होती है, होकर खूब प्रेम से रामायण गांव में मिल करके सामूहिक पाठ, हजार आदमी हो तो एक एक आदमी को हजार हजार पाठ का पुण्य होता है। वही कानों में सुनाई दे, वही मुंह सुखे, वही नेत्रों से देखे, वही सुने, वही देखे, वही समुदाय पाठ कर रहे हैं, रावण की ध्वनि निकल रही है। ऐसा मौका कोई भगवान की कृपा से ही मिलता है। इकला पाठ तो अपने घर एक भाई बहन कर सकते हैं अपने घर में, पर इतने समुदाय मेरे प्रेम से खूब आनंद समारोह के साथ, और जिसमें कोई भेंट नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई टक्स नहीं, कोई किसी लगाव नहीं, पाठ करो मस्ती से, बड़ा सत्संग दरिया नहा लो जिस गति चाहे, कोई बैठो कोई सुनो नहीं, ऐसा अपने उत्साह हो रहा है। तो ये बातें कई याद आ गई कहती महाराज, मैंने वो क्या कहें आपसे पूछा कोई बोले ही नहीं, आप ही सुनाओ भाई सुना लगे याद आ गई बात कह दी। विचित्र बात है, वो रामायण का पाठ हो रहा है तो 12:30 का रखा समय
जी,
12:30 का समय रखा है पाठ होगा। खूब आओ प्रेम से और भाई बहनों को भी लाओ, अच्छे काम में लगाना है, वो भी बड़ा भारी पुण्य है। किसी तरह से कोई इसमें सहमत हो जाए, शरीक हो जाए, आनंद ले ले बना, मौज ले ले बना, तो बड़ी अच्छी बात है। नारायण 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 नारायण।
सुन मन उन संतों की वाणी, सुन मन करते हैं चोट कलेज भीतर करते हैं उठे जिंदगानी चम उठे जिंदगानी सुन मन उन संतों की वाणी सुन मन उन संतों की उन संतों की वाणी को प्राणी को चाहे नहीं चिंता नहीं मन में चाहे सबसे बढ़कर दानी सब कर दानी सुन मन उन संतों की वाणी सुन मन करत है चोट कलेज भीतर करत चमक उठे जिंदगानी चमक उठे जिंदगानी सुन मन उन संतों की वाणी सुन मन रागन द्वेषन लेस किसी से रागन चाल चले मस्तानी चाल हरि सुमिरन सो हियरो उमड़े हरि सुमिरन कहो चाहे ज्ञानी प्रेमी कहो चाहे ज्ञानी सुन मन उन संतों की वाणी सुन मन करत है चोट कले चमक उठे जिंदगानी चमक उठे जिंदगानी सुन मन उन संतों की वाणी सुन मन स्वार्थ छोड़ जगत की सेवा स्वार्थ छोड़ सुमिरन सारंग पानी सुमिरन आदर मान करे ओ अनर आप अमानी सुन मन उन संतों की बानी सुन मन क्या जाने विषयन सुख भोगी क्या जाने प्यारा जाने कोई जन हरि जी का प्यारा हरि जी में सुरता समानी हरि जी में सुरता समानी सुन मैंने